19 इमोशनल ब्रेकडाउन। अब आस्था की बात सुनकर रश्मि मुस्कुराने लगी और उसने उन्हें टोका। तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आज छुट्टी ली है। और पता है तुम्हें, मेरे पतिदेव ने क्या कहा था कि वो आज का सारा दिन मेरे साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया और वो मुझे यहाँ फंसा कर चले गए। और अब मैं क्या करूँ, वापस अस्पताल भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ छुट्टी के लिए मेल डाल दी है। ये सुनकर सभी उसकी ओर देखते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि रश्मि के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा था। और रश्मि को बहुत ही कम गुस्सा आता था और सभी लड़कियाँ सोच रही थीं कि ज़रूर ये उसकी प्रेगनेंसी की मूड स्विंग्स का असर है। अब राधिका तीनों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोली, देखिए सबका अपना अपना बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है सब अपने काम पर जाएंगे ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके एब्सेंट में बोर हो जाएंगे। उन्हें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि उनकी पत्नी उनके बिना नहीं रह सकती हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा तो वो और चढ़ जाएंगे। तभी एंजल ने राधिका की बात पर सहमति जताई और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे लगता है हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हम भी उनके बिना हंसी खुशी से रह सकते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमें उनका साथ चाहिए तो उनके भाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ ना? इतना कहकर एंजल चुप हो गई और सबकी ओर देखने लगी। उसकी बात सुनते ही वंशिका मुंह फुलाते हुए जल्दी से हामी भरते हुए बोली, वैसे भी मेरे पति को तो अपनी हैंडसमनेस पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहा था कि उनके पास लड़कियाँ लाइन लगाकर अभी भी आती हैं। वंशिका की बात सुनकर रश्मि का मुंह भी छोटा हो गया और वो तपाक से बोल पड़ी, ये बात तो सच है और मेरे आकाश के पीछे तो शहर भर की सारी लड़कियां पागल हैं। वैसे मेरा पति भी ठीक ठाक दिखता है, मैंने नोटिस किया था, स्कूल में भी उसके आसपास ऐसे ही कितनी सारी तितलियां मंडराती रहती थीं। तब राधिका कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, और भला मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे पति तो पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते थे, उसके बाद उन्हें मुझसे प्यार हुआ, और मुझे डर है कि अब अगर उन्हें मेरे बाद किसी और से प्यार हो गया तो। इसलिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारे पति कम हैंडसम दिखें, कुछ दवाइयाँ या कुछ और ऐसा करें जिससे वो हमेशा हमारी मुट्ठी में रह सकें। एंजल, जो अब तक चुप रहकर उनकी बातें सुन रही थी, वो हंसते हुए बोल पड़ी, हेलो लेडीज़, अपनी पतियों की बुराई तो हम बाद में भी कर सकती हैं, शायद आप सब भूल रही हैं, नानी माँ हमें थोड़ी देर पहले बुलाकर गई थीं, और देखा नहीं आपने उनके फेस के एक्सप्रेशन कितने ज़्यादा डार्क थे, मतलब साफ है नानी माँ फिर से कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं। उसके मुँह से ये सुनते ही आस्था फटाक से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कल की तरह वो हमें एक बार फिर से लहंगे, साड़ी या ढेर सारा मेकअप करवा दे? ये सुनकर सभी मुँह दबाकर हंसने लगी। हाँ हाँ, लेकिन ये बात सच है, नानी माँ के मेकअप से फ़ायदा तो बहुत हुआ, पति लोगों ने रात भर तारीफ़ की। ये कहते हुए आस्था मुस्कुरा दी और उसके साथ साथ बाकी सभी मुस्कुरा दी। ही। अचानक वहाँ हंसने की आवाज़ें गूंजने लगीं, क्योंकि सभी चुपके से अपने मुँह पर हाथ रखकर हंस पड़ी थीं। क्योंकि भले ही नानी माँ ने उन्हें हैवी मेकअप और भारी भरकम कपड़े पहनाए थे, लेकिन वे सभी उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही थीं। फिलहाल अब जल्दी ही सब उठ खड़ी हुई और सीधा नानी माँ के पास जाने लगी। जैसे ही वे वहां पहुंची तो एकदम से भौचक्की रह गईं। नानी माँ ने 6 से 7 कटोरियों में अलग अलग तेल रखे हुए थे। उन्होंने उन सबको शांत भाव से देखकर अपनी तरफ बुलाया, अब बारी बारी से तुम सब एक एक करके आओ और मेरे सामने बैठो, मैं तुम सबके सिर में आज तेल लगाऊंगी, नानी ने सबकी ओर देखकर एकदम से कहा। ये सुनकर सब एक दूसरे की ओर आंखें मटकाते हुए देखने लगी। राधिका और वंशिका धीरे से आपस में बुदबुदाई, ओ तेल बालों में, वो भी इतना सारा, ओ ये तो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है यार, और मुझे ये चिपचिपापन बिल्कुल पसंद नहीं। नानी माँ उनकी बातें सुनकर एकदम से हंसी और धीमी आवाज में उन्हें डांटा, बिटिया तेल तो हम तुम सबको जरूर लगाएंगे, तुम सबके बाल देखो जरा कितने ज्यादा रूखे हो गए हैं, अगर इन्हें सही से पोषण नहीं मिलेगा तो ये खूबसूरत लंबे घने कैसे रहेंगे। और ऐसे तो तुम लोग जल्दी बूढ़ी दिखने लगोगी, तुमने देखा नहीं हमारे बाल, अरे हम तो 70 से 75 की हो चली हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारे बाल अभी भी कितने मजबूत हैं और इतने ज्यादा सफेद भी नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बालों की अच्छी तरह से देखभाल की है, तभी तो ये ऐसे हैं। अब आओ तुम सब फटाफट से सामने बैठो। उनकी बात सुनकर सबका मुंह बन गया। अब तो सब लड़कियां एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं। फिर आस्था सिचुएशन संभालते हुए बोली, नानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम अपने बालों से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी कितने दिनों से हमारे सिर में भी तेल नहीं लगा, ठीक है, इसलिए नानी माँ सबसे पहले आप हमारे सिर में तेल लगा दीजिए प्लीज। इतना बोलकर जल्दी ही आस्था नानी माँ के सामने बैठ गई थी। तब आस्था के सामने रौनक धम से बैठी और चहकते हुए बोली, ठीक है आस्था, तुम नानी माँ से लगवाओ और मेरे बालों में तुम तेल लगाओ। फिर रौनक के सामने राधिका बैठी, फिर राधिका के सामने रश्मि और अंत में एंजल, वंशिका, सभी बैठकर एक दूसरे के सिर में अब लाइन से तेल लगाने लगी थी। साथ ही साथ सब मुस्कुराई जा रही थी। उस वक्त ये एकदम बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली जैसा मोमेंट लग रहा था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन से अरमान की कार के निकलते ही सभी की गाड़ियां उसके पीछे पीछे हो ली थी। गाड़ियां किसी और जगह नहीं बल्कि सीधा सुमित के होटल में आकर रुकती हैं। वहां पर सुमित के होटल का वीआईपी लॉन्च पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था, जहां अरमान सबके साथ मीटिंग करने वाला था। वो अब अपने फार्म हाउस पर नहीं जा सकता था क्योंकि फार्म हाउस पर अभी भी वीर और वसुंधरा मौजूद थे, इसीलिए अरमान ने सुमित के होटल को ही मीटिंग के लिए चुना था। अब जैसे ही अरमान और बाकी सब वहां पहुंचे, अरमान एक राजा की तरह वहां बैठ गया था। अविनाश अब अपने चेहरे पर हैरानी भरी एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, क्या बात है अरमान, आपने इस तरह से मीटिंग क्यों रखी है? सब ठीक है ना, या कोई खास बात है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं? वहीं आकाश ने भी तुरंत एक्सप्लेन किया, अरमान अंश को किडनैप करने वाले को हमने पकड़ लिया है, और रही बात ब्लैक डेविल की, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो इस तरह से डायरेक्टली हम लोगों पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सीधे सीधे माफिया वर्ल्ड के रूल तोड़ेगा और उसके बाद कभी कोई उसका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और शायद इसीलिए उसने विवेक अंकल को अंश की किडनैपिंग के लिए चुना था, ताकि अगर विवेक अंकल पकड़े भी जाएं तो उस पर कोई उंगली ना उठा सके। वहीं आहान अरमान की ओर सीरियस एक्सप्रेशन से देखकर धीमी और गहरी आवाज में बोला, भाई आपके चेहरे की एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कोई तो बड़ी बात है जो बताने के लिए आपने हम सबको यहाँ बुलवाया है, बताइए ना वो क्या बात है भाई? अरमान उन सबकी बातें सुनने के बाद सीरियस वॉइस में बोला, देखो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ शायद आप लोगों को सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बात करना मेरी मजबूरी है। मजबूरी वाला शब्द सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे। अरमान सिंघानिया ने आज तक इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया था। तभी अरमान ने आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और अविनाश की ओर देखकर सख्त आवाज में आगे जवाब दिया, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं आस्था और अंश को अविनाश के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। अरमान की बात सुनते ही अगले ही पल कमरे की हवा जैसे ठहर सी गई और एक पल के लिए सबके सब ठिठक गए और उनके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। अरमान की बात सुनते ही अविनाश खुश होकर फट से बोला, ओ रियली, तुम तैयार हो आस्था और अंश भेजने के लिए?
क्योंकि जब से अंश का जन्म हुआ था अविनाश कितनी ही बार आस्था को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाने की जिद कर चुका था, ताकि वो दादाजी को आस्था से मिलवा सके जो आस्था की आस में बैठे हुए थे। लेकिन अरमान हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात उसे हमेशा टाल दिया करता था, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं कर पाया कि वो आस्था को अपने आप से दूर कर सकें। लेकिन आज महीनों बाद अरमान ने जैसे ही ये बोला वैसे ही अविनाश खुश हो गया और एक्साइटेड होकर तपाक से बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें इतना क्या सोचना और इतनी खुफिया मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? वहीं अविनाश के चेहरे पर आई खुशी को देखते हुए अरमान नाखुश होकर बेरुखी से बोला, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है मिस्टर रघुवंशी, वेट कीजिए। अविनाश ने अपनी बेकाबू धड़कन पर काबू करने की कोशिश की, फिर उनकी ओर नासमझी में देखने लगता है। तभी आहान अपनी बेचैनी छुपाते हुए बोला, लेकिन मैं अपने भतीजे मेरे चैंप के बिना कैसे रहूंगा, और भाभी भाभी के बिना आप कैसे रहेंगे भाई? ऐसा कैसे हो सकता है, और आप उन्हें कितने दिनों के लिए भेज रहे हैं? अगर सिर्फ उनके दादाजी से मिलवाना है तो वो आपके साथ भी तो जा सकती हैं, और फिर आप दादाजी से उन्हें मिलवाकर वापस ला सकते हैं। अरमान ने आहान की ओर शांत नजरों से देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो आहान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सबके सब कुछ दिनों के लिए अविनाश के साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। अब ये सुनकर तो सुमित, ध्रुव, आहान और आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। वहीं आकाश तुरंत उठ खड़ा हुआ और अरमान को गहरी नजरों से देखते हुए उस पर बरस पड़ा, अरमान साफ साफ बताओ बात क्या है, तुम इस तरह से गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो, और तुम कब से साफ साफ बात कहने में डरने लगे हो, बात क्या है, साफ शब्दों में बोलो। वहीं अरमान ने होंठ से कोड़े और आह भरते हुए और आकाश की ओर देखकर कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा एक दुश्मन वापस आ गया है और उसका मुकाबला मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि वो मेरे बचपन का दुश्मन है और उसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल अविश्वास भरी से नजरों से देखने लगे थे। आकाश और सुमित को इस दुश्मन के बारे में बहुत पहले से ही पता था, लेकिन ध्रुव और आहान केवल सम्राट को ब्लैक डेविल के नाम से ही जानते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब्लैक डेविल असल में अरमान के बचपन का दुश्मन है। फिलहाल आहान तुरंत ही बेचैन होकर बोला, भाई आप ये क्या कह रहे हैं, भला हम सब आपको छोड़कर? नहीं नहीं भाई, किसी एक शख्स के डर से हम मुंह छुपाकर ऐसे कैसे जा सकते हैं भाई, आपको और दादाजी को ऐसे हालात में छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं भाई, आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं? तभी अरमान सबको शांत कराते हुए सीरियस होकर बोला, इस तरह पहले से ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है आहान, बिहेव मैच्योर, तुम अब इस तरह से पैनिक नहीं हो सकते, शांत होकर मेरी बातें ध्यान से सुनो, मुझे कुछ वक्त चाहिए और जब तक आप सब ऑस्ट्रेलिया में रहोगे तब तक मैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। इतना सुनकर ध्रुव, आकाश, सुमित और आहान तुरंत अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा तो अरमान ने तुरंत नामे गर्दन हिलाकर अपने सिर पर हाथ मार लिया था। वो समझ चुका था कि इन्हें समझाना पूरी तरह से बेकार है, उसके दोस्त या भाई बिल्कुल भी उसकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। तभी अरमान ने बारी बारी से सबकी ओर कठोरता से देखा और धीरे से रूखे अंदाज में कहा, मैं ये तुम लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ और हमेशा की तरह तुम सबको मेरा ऑर्डर फॉलो करना ही होगा, ओके? तभी आहान अचानक आगे आकर बेपरवाही से अरमान को गले से लगाते हुए बोला, भाई अगर आप मुझसे कहोगे कि कुछ दिनों के लिए मैं खाना छोड़ दूं या फिर रोना छोड़ दूं तो मैं वो करने का ट्राई कर सकता हूं, लेकिन आप अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहे हैं भाई, और ये मुझसे कभी भी नहीं होगा और इस जन्म में तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। इतना बोलकर आहान ने अरमान को इमोशनल होकर कसकर गले से लगा लिया था। वहीं अरमान ने अब उससे इरिटेट होकर उसे खुद से दूर धकेल दिया और उस पर बरस पड़ा। बस कर, कब तक ये बचपना करता रहेगा? आखिरकार तू कब बड़ा होगा? तू समझदार क्यों नहीं हो जाता है? ये दुनिया बच्चों की नहीं है बेटा, तुझे मैच्योर होना ही होगा। जिस वक्त तू डेविल किंग के साथ होता है उसी तरह का बिहेव किया कर, उसी तरह बनकर रहा कर, समझा तू? क्योंकि अरमान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जब भी आहान अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है तो उससे ज्यादा सीरियसनेस के साथ काम कोई नहीं करता। वो अपना काम बहुत ही सीरियसनेस और शार्पनेस के साथ करता है, लेकिन जब वो फैमिली के साथ होता है तो उसके जैसा बच्चा कोई नहीं होता। फिलहाल आकाश, सुमित और ध्रुव भी आहान के पास चले आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसकी पीठ पर प्यार से थपथपाते हुए धीरे से उसे समझाते बोले, देखो आहान, शांत हो जाओ। फिर ध्रुव ने अरमान को देखते हुए बिना झिझके एक्सप्लेन किया, अरमान भाई भले ही मुझे आहान की बातें हमेशा इरिटेटिंग लगती हों, लेकिन आज आहान जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते और इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज आप हमें कोई और टास्क दीजिए, कोई और काम दीजिए, वो काम हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हम आपको छोड़कर ना तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ना ही कहीं और जाएंगे। अगर आपको घर की लेडीज की सेफ्टी की कुछ ज्यादा ही चिंता है तो आप उन सबको ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं और हम सब यहाँ मिलकर आपके साथ ब्लैक डेविल का काम तमाम कर देंगे, ठीक है? अब ये सुनकर अरमान ने गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब उसकी आंखों के सामने 8 साल का वो ब्लैक डेविल यानी सम्राट का चेहरा नजर आने लगा था। उसकी आंखों के सामने ब्लैक डेविल का खून से सना चेहरा उभर आया, जिसके दांतों पर, आंखों और मुंह पर बुरी तरह से खून लगा हुआ था और वो अरमान की ओर देखकर बुरी तरह से हंस रहा था। ये मंजर देखकर वैसे ही अरमान ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली थी, क्योंकि वो मंजर उसके लिए बहुत खतरनाक था। अरमान ने मन में सोचा, आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं इन्हें आने वाले खतरे से बचाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इन लोगों का ब्लैक डेविल से कोई सामना हो। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था अरमान के दिमाग में और आगे क्या होगा इस कहानी में?